डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के भजन व्याख्यान 15 2024 ब्रूस वाल्ट के और टेड हिल्डेब्रांट। यह भजन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के हैं। यह सत्र संख्या 15 याचिका स्तोत्र स्तोत्र 51 है। आइए पाठ पर पहुंचने से पहले प्रार्थना के एक शब्द के साथ फिर से शुरुआत करें। पिता, हम आपको बिल और बाइबल प्रशिक्षण के लिए, रॉबिन और उसके परिवार के लिए और इसमें किए गए निवेश और इसके साथ आगे बढ़ने में उसके विश्वास के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि आप उसे आशीर्वाद देंगे और पुरस्कृत करेंगे तथा यहाँ हमारे प्रयासों को आशीर्वाद देंगे। उन छात्रों के साथ रहें जो आपकी कृपा से शिक्षित होंगे। वे आपके शब्द और उसकी सारी संपत्ति दूसरों के साथ साझा करने में सक्षम होंगे। विद्यार्थियों को अपने आप में खुशी दें, एक ऐसी खुशी जो आपकी प्रशंसा में खुद को व्यक्त करेगी। मसीह के नाम पर आमीन। ठीक है, हम भजन 51 में हैं और ये दो कारण हैं जिनसे मैंने भजन चुना। सबसे पहले ऐसा इसलिए है क्योंकि यह फिर से सबसे प्रसिद्ध भजनों में से एक है। यह भजन 23 की तरह है। बहुत से लोग बतशेबा के साथ पाप के बाद दाऊद की स्वीकारोक्ति का भजन जानते हैं। यह उन स्तोत्रों में से एक है। यह एक प्रार्थना स्तोत्र भी है। यह पाप की क्षमा के लिए एक याचिका है। यह एक ऐसा भजन है जिसकी हमें ईश्वर की कृपा के लिए लगातार आवश्यकता होती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पाप कितने बड़े हैं और कितने हैं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि ईश्वर इस तरह की प्रार्थना सुनते हैं और उनकी कृपा हमारे पापों से अधिक है। अनुवाद तो भजन 51:1, यह डेविड का एक भजन है। जब दाऊद ने बतशेबा के साथ व्यभिचार किया, तब भविष्यवक्ता नाथन उसके पास आया, हे परमेश्वर, अपने अटल प्रेम के अनुसार मुझ पर दया कर। अपनी महान करुणा के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दो, मेरे सारे अधर्म को धो डालो और मुझे मेरे पाप से शुद्ध कर दो। क्योंकि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप सदैव मेरे सामने रहता है। मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया और वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए आप अपने फैसले में सही हैं और जब आप फैसला करते हैं तो न्यायसंगत होते हैं। निःसंदेह मैं जन्म से ही पापी था और जब से मेरी माता ने मुझे गर्भ में धारण किया तब से ही पापी हूँ। आप वफादारी चाहते थे और यह लगभग विशिष्ट रूप से गर्भ में NIV है। उस घिसे हुए स्थान में लिखा है, तूने उस गुप्त स्थान में मुझे बुद्धि सिखाई। लेकिन यह यहाँ सिट्टम और तुलाच पर दो शब्द हैं और इसका मतलब बोतलबंद जगह है। मैं उसके बारे में और बात करूंगा। मुझे जूफा से शुद्ध करो और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो दो और मैं बर्फ से भी अधिक सफेद हो जाऊंगा। मुझे खुशी और खुशी सुनने दो। जिन हड्डियों को तुमने कुचल डाला है उन्हें आनंदित होने दो। अपना मुख मेरे पापों से छिपा ले और मेरे सारे अधर्म को मिटा दे। हे भगवान, मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय पैदा करो और मेरे भीतर एक दृढ़ आत्मा का नवीनीकरण करो। मुझे अपने सामने से न निकालो और न अपना पवित्र आत्मा मुझसे छीनो। मुझे अपने उद्धार का आनंद लौटाओ और मुझे सहारा देने के लिए एक इच्छुक आत्मा प्रदान करो। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, तू जो मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, मुझे रक्तपात के दोष से छुड़ा और मेरी जीभ तेरे धर्म का जय जयकार करेगी। हे प्रभु, मेरे होंठ खोलो और मेरा मुंह तेरी स्तुति का वर्णन करेगा। तुम्हें बलि से प्रसन्नता नहीं होती, अत मैं इसे ले आऊंगा। तुम होमबलि से प्रसन्न नहीं होते। मेरा बलिदान, हे भगवान, यह एक पाठ्य परिवर्तन है। यह भगवान का बलिदान हो सकता है या थोड़ी सी पुनरावृत्ति के साथ मेरा बलिदान हे भगवान एक टूटी हुई आत्मा एक टूटा हुआ और पछतावा दिल है, भगवान आप तिरस्कार नहीं करेंगे। सियोन को समृद्ध करना और यरूशलेम की शहरपनाह का निर्माण करना तुझे प्रसन्न करे। तब तू होमबलि से अधिक धर्मियों के धर्म के बलिदानों से प्रसन्न होगा। तब संगीत निर्देशक के लिए तुम्हारी वेदी पर बैल चढ़ाए जाएंगे। यह पृष्ठ 181 पर है। और हम जा सकते हैं, मुझे पता है, फिर से मैं सीधे भजन में जाऊंगा। और यह वास्तव में पृष्ठ 184 पर शुरू होता है, सीधे भजन में जाता है। और हम सुपरस्क्रिप्ट डेविड के भजन से शुरू करते हैं। मैं आपको बस इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताऊंगा। यह जिम के काम का एक नोट है कि प्रोफेसर ह्यूस्टन के काम में मध्ययुगीन रोमन ब्रेवियरी में क्रिसमस और लेंट के अपवाद के साथ प्रत्येक मठवासी सेवा के समापन पर हर घंटे इस भजन का पाठ किया जाता था। 13 शताब्दियों तक पाप से मुक्ति पाने के लिए इसे प्रतिदिन 7 बार दोहराया जाता था। फ्रांसीसी डी दुख के रूप में इसे यहूदी परंपरा में ऐश बुधवार के लिए चुना गया था। इसे प्रायश्चित के दिन उचित रूप से मेढ़े के सींग के साथ गाया जाता था। तो अनुबंधित लोगों के इतिहास के भीतर इसका एक महान इतिहास रहा है। और वास्तव में हमने टिप्पणी की, यह एक भजन और गीत है। और अब पृष्ठ का निचला भाग तब है जब नाथन भविष्यवक्ता बतशेबा के साथ व्यभिचार करने के बाद उसके पास आया था। और यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अगली बात जो मैं वहां लिखता हूं, मैं नोट करता हूं, और ये छंद उस भजन में हैं, बतशेबा के खिलाफ पाप के साथ सुपरस्क्रिप्ट में जुनून के पाप हैं। एक जुनून का पाप है और एक सोची समझी निर्मम हत्या का पाप है। तो बतशेबा उस समय की वासना थी और उसकी वासना ने उसे अभिभूत कर दिया। शरीर की लालसा ने उसे नष्ट कर दिया। लेकिन उसके पति की हत्या 2 सप्ताह की अवधि में हुई। यह सोची समझी हत्या है। उसका प्रयास अपनी बतशेबा चाल को छुपाने का होगा और वह व्यभिचार से बच्चे का पिता बनने जा रहा है। उसे यह दिखाना होगा कि पति उरियाह ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे का पिता बना। यह स्पष्ट है कि उसका पति जो एक हित्ती है, फिर से एक गैर यहूदी है, एक बहुत ही वफादार सैनिक है, इसराइल के राजा पर भरोसा करने के लिए परिवर्तित हो गया और वाचा समुदाय का हिस्सा बन गया। उनके पति 29 महान योद्धाओं में से एक हैं, जिनका उल्लेख डेविड करते हैं। वह शेष 30 में से एक है, एक जबरदस्त योद्धा है। वह अम्मोन के बाहर योआब से युद्ध कर रहा है। डेविड यरूशलेम में घर है। उसे घर पर नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि उसे अपने सैनिकों के साथ वहां रहना चाहिए था, लेकिन वह अंदर है। वैसे भी वह घर पर ही रहा और यह उसकी गलती है। और जब उसे बतशेबा से पता चलता है कि उसके व्यभिचार के कारण वह उससे कहती है कि वह गर्भवती है, तो उसे छिपाने की जरूरत है, ताकि ऐसा प्रतीत हो जैसे कि उरियाह का पति है, उसने बच्चे को जन्म दिया है। और इसलिए वह अम्मोन रब्बा के पास एक दूत भेजता है और दूत को वहां पहुंचने में 4 दिन लगते हैं। वह 4 दिन है। वह उरियाह को अपने साथ यरूशलेम वापस लाता है। वह और 4 दिन 8 दिन। वह उरियाह को अपनी पत्नी के साथ सुलाने की कोशिश करता है और इसमें 2 या 3 दिन लग जाते हैं। उरियाह वह जो वफादार आदमी है, न तो युद्ध के दौरान न ही लड़ाई के दौरान मुझे खुशी होगी और मना कर देगा। डेविड उसे नशे में धुत कर देता है, लेकिन उसकी नैतिकता और प्रतिबद्धता इतनी दृढ़ है कि भले ही उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली हो, लेकिन वह जो है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वह भगवान का एक जबरदस्त आदमी है। तो अब हमारे पास 8 दिन और 2 या 3 दिन हैं। अब और इसलिए दाऊद क्या करता है, वह उरियाह की मौत की सजा लिखता है और योआब से कहता है कि वह उसे शहर की दीवार के सामने खड़ा कर दे और फिर वापस चला जाए। तो वह वहां अकेला है और उसका मारा जाना निश्चित है। ऐसा लग रहा है जैसे ये युद्ध की त्रासदी है। तो यह एक कवरअप है, पूरी तरह से कवरअप है। डेविड जो कर रहा है वह पूरी तरह से दुष्ट है। तो इस आड़ में, जैसे कि यह सिर्फ युद्ध की एक दुर्घटना है, ये चीजें युद्ध आदि में होती रहती हैं। फिर भी यह हत्या की श्रेणी में आता है। मोआब योआब को भी यह पसंद नहीं है। वह जानता है कि क्या हो रहा है। इसलिए जब उरियाह वहां वापस आता है, निश्चित रूप से योआब सभी सैनिकों को वापस ले लेता है और उरियाह को शहर और शहर की दीवार के सामने एक आदमी पर तीरों की बारिश के साथ खड़ा छोड़ देता है। उसके पास कोई मौका नहीं है और वह मारा गया है। एजेंट दाऊद है और तलवार अम्मोनियों की तलवार है। यह सोची समझी हत्या है। बिल्कुल कोई बहाना नहीं है। ये कोई जुनून की बात नहीं है। वह पूरी तरह से दोषी है। तो यह जुनून का पाप है और वास्तव में एक अद्भुत व्यक्ति की, उसके मुख्य अधिकारियों में से एक की, बहुत सोच समझकर की गई हत्या है। यह सब खुद को छिपाने के लिए किया गया है। सबसे बुरी बात यह है कि उस पर आरोप लगाया गया है। जब नाथन उसके पास आता है और उस पर ऐसा करने का आरोप लगाता है, तो वह उस पर भगवान के वचन का तिरस्कार करने का आरोप लगाता है, क्योंकि यही समस्या है। उसने परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। मैं आपको पृष्ठ 184 के नीचे कुछ छंद देता हूँ, लेकिन ये छंद उतने सटीक नहीं हैं जितना मैं चाहूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मानवता के खिलाफ अपराध, और फिर यह मुख्य बात है, भगवान के खिलाफ अवज्ञा, अर्थात उसके वचन, और वह 2 शमूएल 12:9 होना चाहिए। इसलिए यदि आप 2 शमूएल 12:9 की ओर मुड़ना चाहते हैं, तो यह पाप के दो भागों, व्यभिचार और हत्या का सारांश प्रस्तुत करता है। तो 12:9, यह डेविड निंदा कर रहा है। और उसने कहा, 2 शमूएल 12:09, नातान ने दाऊद से कहा, तूने वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तूने यहोवा के वचन का तिरस्कार क्यों किया? तूने हित्ती उरियाह को तलवार से मार डाला और उसकी पत्नी को अपना बना लिया। तूने उसे अम्मोनियों की तलवार से मार डाला। आरोप है, उसने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया। दो कानून और वे यहां पूरी तरह सटीक नहीं हैं। तो बस उन्हें अधिक सटीकता से लिखें। दो कानून हत्या के लिए 1:35:16 है, और व्यभिचार के लिए व्यवस्था विवरण 22:12 है। ये वास्तव में केवल दो कानून हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। तो आप 35:16 देख सकते हैं, जिस कानून का वह उल्लंघन कर रहा है। इसमें कहा गया है, यदि कोई किसी पर लोहे की वस्तु से घातक प्रहार करता है, तो वह व्यक्ति हत्यारा है। हत्यारे को मौत की सजा दी जानी है। तो कानून के अनुसार, मेरा मतलब है, इस अर्थ में लोहे की वस्तु तलवार है। उन्होंने इसे प्रतिष्ठित लोगों की एजेंसी के माध्यम से किया, लेकिन अंततः डेविड ही ऐसा कर रहे हैं। इसलिए वह उस आज्ञा का उल्लंघन करता है और उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। वह मौत की सजा के अधीन है। और व्यभिचार के लिए मेरे साथ व्यवस्था विवरण 22 की ओर मुड़े, जहां व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों को मौत की सजा दी जाएगी। व्यवस्था विवरण 22:22। क्या यह याद है? यह मेरे पास यही है। व्यवस्था विवरण 22:22 में यदि कोई पुरुष किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ सोता हुआ पाया जाता है तो उसके साथ सोने वाले पुरुष और महिला दोनों को मरना होगा। तुम्हें इसराइल से बुराई को दूर करना होगा। तो एक तरह से वे दोनों, डेविड और बतशेबा, दोनों मौत की सजा के अधीन हैं। उसे कोई दोष नहीं दिखता। वह ऐसा नहीं करता, वह भजन में पूरी जिम्मेदारी लेता है। वह यह नहीं कहता, रुको भगवान, उसने मुझसे यह करवाया। मेरा मतलब है, मुझे आश्चर्य हो सकता है, हर कोई जानता है कि राजा कहाँ है, जैसे हम जानते हैं कि राष्ट्रपति ओबामा कहाँ है। और कभी कभी हम चाहते हैं कि हमें पता न होता कि बिल क्लिंटन कहाँ थे। लेकिन किसी भी मामले में हर कोई जानता है कि राष्ट्रपति कहाँ है या राजा कहाँ है। हर कोई जानता है कि वह निवास में है और उसका महल पहाड़ी की चोटी पर है। और मुझे खुद से पूछना होगा कि राजा के महल के नीचे एक कुएं की छत पर एक महिला क्या स्नान कर रही है। यह कुछ प्रश्न उठाता है, लेकिन बाइबल इसका उत्तर नहीं देती है और बतशेबा को दोष नहीं देती है। इस मामले में यह पूरी तरह से डेविड की गलती है। परंतु मुद्दा यह है कि उसने परमेश्वर के वचन का तिरस्कार किया है और अपनी अभिलाषा के लिए उसकी अवज्ञा की है, और वह मौत की सजा के अधीन है। और यहां मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि जब आप कानून पढ़ते हैं तो आपको कानून को प्राथमिक इतिहास के हिस्से के रूप में पढ़ना चाहिए। यह उस कथा का एक हिस्सा मात्र है जो वहां प्रस्तुत की गई है। लेकिन कानून वास्तव में न केवल वही जारी रखता है जो उसने मूसा से कहा था, बल्कि इसराइल के इतिहास में भगवान द्वारा इसकी व्याख्या कैसे की गई है। तो वेश्या राहाब को बचाना, जो हमें दिखाता है कि कानून की व्याख्या कैसे की जाए। जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे मौत की सजा दी जाती है और वे पश्चाताप करते हैं और वे भगवान को अपना भगवान मानते हैं, वह और उसका पूरा परिवार वाचा समुदाय में आए। वह टोरा का हिस्सा है। और यह पूरी कहानी कि ईश्वर उसे माफ कर दे और तुम नहीं मरोगे, इसे हत्या के लिए मृत्युदंड अपराध और व्यभिचार के लिए मृत्युदंड अपराध की इन दो आज्ञाओं के संबंध में पढ़ा जाना चाहिए। जब सच्चा पश्चाताप होता है तो उन्हें दंडित नहीं किया जाता है। मैं जो बात कह रहा हूं वह टोरा का हिस्सा है। तो वे दोनों मौत की सजा के अधीन हैं। और इसके अलावा वे स्थिति को बदल नहीं सकते। दूसरे शब्दों में यह अपूरणीय है। उन्होंने जो किया उसका ऐतिहासिक तथ्य है, यानी वह जान नहीं दे सकता। वह लेक स्टैलियोनिस को प्रभावित नहीं कर सकता, यानी आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, वह नहीं कर सकता। खैर, यह थोड़ा अलग है। वह उरियाह को जीवन वापस नहीं दे सकता, वह मर चुका है। वह बतशेबा को उसकी पवित्रता वापस नहीं दे सकता, वह बतशेबा को पवित्रता वापस नहीं दे सकता, यह नामुमकिन है। हालांकि वह यह नहीं कह सकता कि मैं क्षतिपूर्ति और बहाली की तलाश में हूं, फिर भी उसे माफ कर दिया गया है, जो मुझे लगता है कि आश्चर्यजनक है। मैंने इसे पृष्ठ 185 पर आपके नोट्स में सूचीबद्ध किया है कि भगवान के खिलाफ उनकी अवज्ञा में मैं बताता हूं कि यह व्यभिचार और हत्या दोनों के लिए एक गंभीर अपराध है। दो क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। मुझे यहाँ एक तीसरे की जरूरत है जिसे मैंने शामिल नहीं किया है, अर्थात हमें यहाँ तीसरा जोड़ने की आवश्यकता है कि जो कोई अपने पाप या अपने पाप को स्वीकार करता है और उसे त्याग देता है उसे दया प्राप्त होती है। वह नीतिवचन 28:13 है। फिर से मुझे लगता है कि इसे नीतिवचन 28:13 की ओर मोड़ना उचित है। मुझे आशा है कि मैंने समय से पहले इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ। जो अपना पाप छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उन्हें मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया होती है। और दाऊद इस भजन में जो करता है वह उसे स्वीकार करता है। वह बिल्कुल साफ ब्रेक के साथ आता है। वह इसका त्याग कर देता है। वह शुद्धिकरण के लिए खून की तलाश करता है और उसे माफ कर दिया गया है। तुम्हारी मौत नहीं होगी। यह पैगंबर का वचन है। यह अद्भुत कृपा है। नंबर 4, तो क्योंकि वह त्याग करता है, कबूल करता है और भगवान की दया की ओर मुड़ता है, वह इस ईश्वरीय पश्चाताप के साथ पूर्ण क्षमा पाता है। वास्तव में क्षमा इतनी महान है कि व्यभिचार से सुलेमान उत्पन्न हुआ, जिसे ईश्वर का प्रिय जेदिदिया कहा जाता था। ईश्वर की कृपा उसके सभी पापों से अधिक थी, लेकिन ऐतिहासिक अपराध बोध अभी भी मौजूद है। अगर मैं नशे में झगड़ता हूँ और बियर की बोतल तोड़ता हूँ और किसी की आंख पर वार करता हूँ और फिर मैं माफी के लिए भगवान के पास जाता हूँ, तो भगवान मुझे माफ कर देंगे। परंतु जिस व्यक्ति को मैंने घायल किया वह अब भी अंधा होगा। इसके अभी भी ऐतिहासिक परिणाम हैं। और इस विशेष मामले में बच्चा मरने वाला है, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि दुनिया को पता चले, क्योंकि डेविड उसका प्रतिनिधि है। मैं अब भी न्याय का देवता हूँ, और इसलिए उसे न्याय की दृष्टि से डेविड की मृत्यु के बजाय बच्चे की मृत्यु का सामना करना पड़ा। यह मेरे लिए बिल्कुल अद्भुत कहानी है कि भगवान की कृपा इतनी महान है। मुझे दिलचस्पी होगी माइक, मुझे याद है कुछ साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी, उसका नाम क्या था? फे। वह एक कैपिटल सीरियलिस्ट थी। उसने यहाँ टेक्सास में 19 लोगों की हत्या कर दी थी। कार्ला फे, क्या वह ऐसा नहीं था? और उसने सच में कबूल किया और वह हर कोई उसे जानता था। और मैंने टीवी पर देखा, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक नई रचना थी। मेरे फैसले में गवर्नर बुश को उसे माफ कर देना चाहिए था। यदि ईश्वर डेविड को माफ कर सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्य उस जैसी महिला को माफ कर सकता है जिसने जो किया वह पूरी तरह से भयानक था, बिल्कुल भयानक। लेकिन अगर डेविड, कहानी का मुद्दा यह है कि हमारा पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चा पश्चाताप होने पर भगवान की कृपा हमारे पाप से अधिक है, जैसा कि इस भजन में व्यक्त किया गया है। यह मुझे दिखाता है कि हमें उन लोगों को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए जो वास्तव में भगवान की कृपा से बदल गए हैं और बदल गए हैं जैसे वह थीं। उस मामले पर यही मेरा निर्णय होता। मुझे लगता है कि कई लोगों ने उसका साक्षात्कार लिया और कहा कि उसका पश्चाताप स्वीकारोक्ति वैध थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो भी कहा यह सही है। वह उसकी विनम्रता का हिस्सा था। डेविड ने यही किया। यह डेविड की कृपा है। ओह, और मुझे लगता है कि ऐसा कहने के लिए धन्यवाद। देखिए क्या होता है जब नाथन कहता है, तुम ही वह आदमी हो। यह उस अमीर आदमी का उदाहरण देता है जिसने गरीब आदमी से मेमना ले लिया और यह सब गलत हुआ। और डेविड वह अमीर आदमी के बारे में उस दृष्टांत में डेविड से क्या कहता है जो अपने मेहमानों को खिलाने के लिए गरीब आदमी से मेहना लेता है? वह दाऊद में से सच्चे दाऊद को बाहर लाता है। और दाऊद वास्तव में न्यायप्रिय व्यक्ति है। उससे भारी भूल हुई, परंतु वह कहता है उस आदमी को मार डालना चाहिए। नाथन कहते हैं तुम आदमी हो, और डेविड कहते हैं ईश्वर जो भी निर्णय लेता है वह उसे ईश्वर को सौंप देता है, ईश्वर के वचन को। वह वहां यह सब नहीं मानता, और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह कर रही थी। आप जो भी कहेंगे वही सही होगा, और उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी। मेरे लिए यह उसके उद्धार का हिस्सा था। उसने इसके माध्यम से मुझे अनुबंधित मूल्यों को प्रतिबिंबित किया। ठीक है, मुझे लगता है कि यह एक उदाहरण है कि हम भजन को कैसे लागू कर सकते हैं और हम उन पापियों के बारे में कैसे सोचते हैं जिन्होंने सबसे गंभीर पाप किए होंगे, लेकिन वे ईश्वरीय पश्चाताप के साथ भगवान के पास लौट आते हैं, जैसा कि हम इस भजन में देखते हैं। तो वे इस सुपरस्क्रिप्ट में से कुछ हैं। मुझे लगता है कि यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि यह कितना भयानक था। उसने भगवान के वचन को कैसे खंडित किया। वह अपने पड़ोसी की पत्नी से प्रेम करता था। उसने उसे चुरा लिया। उसने व्यभिचार किया। उसने हत्या कर दी। वह भगवान से प्यार नहीं करता था। सब कुछ गलत है, लेकिन वह यह प्रार्थना करता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भिक्षु दिन में 13 बार प्रार्थना करते थे, हमें माफी चाहिए। मैं आपसे यह सवाल पूछने जा रहा हूं। जब गलत किया जाता है, मान लीजिए हमारे समय में, और लोगों को इसका एहसास होता है, तो मैं इसके व्यावसायिक पक्ष पर अधिक सोच रहा हूं। उस समीकरण में पुनर्स्थापन की क्या भूमिका है? यह पूछने के लिए धन्यवाद। इस मामले में वह क्षतिपूर्ति नहीं कर सका, लेकिन यदि क्षतिपूर्ति की जा सकती है तो वह की जानी चाहिए। इसे मान्य करने के लिए, उदाहरण के लिए, यदि मैं कानून यह था कि यदि आपके पास एक भेड़ या एक गाय या एक बैल जो भी हो और मुझे आपकी भेड़ चुरानी थी तो क्षतिपूर्ति होगी, मुझे आपको इसके बदले में 2 भेड़े वापस देनी होंगी न्याय, क्योंकि चूंकि मैंने तुम्हें लूटने का इरादा किया था, अब मुझे लूटना ही होगा। इसलिए मैं न केवल तुम्हें तुम्हारी भेड़े लौटाता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें 2 भेड़े भी लौटाता हूँ, क्योंकि मैंने जो किया है उसका बदला मुझे चुकाना है। यह सख्त न्याय है। अब मान लीजिए कि मैंने आपकी भेड़ चुरा ली है और मैं उसे खा लेता हूँ और मैं उसे आपको वापस नहीं दे सकता क्योंकि मैं उसे खाता हूँ। अब मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें 4 भेड़े देनी होंगी कि मैंने अपनी गलती छुपा ली है। वह पुनर्स्थापन है। इसलिए जब आप क्षतिपूर्ति कर सकते हैं तो यह पूर्ण न्याय है। इसीलिए मुझे लगता है कि फांसी 4 गुना बहाल की जाती है। एक सहयोगी के रूप में, रोम के कर संग्राहक के रूप में, उन्होंने जो अपेक्षा की थी उसके आधार पर कानून का मॉडल यही होता। तो पूछने के लिए धन्यवाद। हमारे पास वह बहुत कुछ है। लोगों को कुछ तरीकों से इससे निपटना होगा। हमारे समाज में वे भेड़प क्रिया थी, लेकिन हमारे समाज में चाहे कुछ भी हो एक प्रकार की संपत्ति है। यह सही है। और कानून को उपयुक्त बनाने के लिए एक निश्चित बुद्धि की आवश्यकता होती है। जिस बात ने मुझे सचमुच चकित कर दिया वह यह कि व्यवस्था विवरण 22 में आपका नियम था, उसी अध्याय में आपको अपने घर की छत के चारों ओर एक मुंडेर लगानी होगी। मैं बच्चों के साथ घर की छत के चारों ओर मुंडेर लगाने के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा, आप क्या सोचते हैं? क्या हमें घर की छत के चारों ओर रेलिंग लगानी चाहिए? ठीक है, मैंने कहा, पिताजी, भगवान ने कहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, मुझे लगता है हमें भी ऐसा करना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, अब इसके बारे में सोचो। उस दुनिया में छतें सपाट थीं और लोग घर की छत पर थे और बच्चे गिर जाते थे और अपंग हो जाते थे या मारे जाते थे, जबकि हमारे पास बारिश से बचने के लिए एक खड़ी छत है और छत से बर्फ गिरती रहती है और ऊपर कोई नहीं है और पैरापेट कोई अच्छा काम नहीं करेगा। अब तुम्हारा क्या विचार है? नहीं, वहां पर पैरापेट लगाने का कोई मतलब नहीं था। तो फिर मैंने उनसे कहा, ठीक है, तो कैसे आज कानून का क्या मतलब है? मैं हैरान था। मेरे 9 साल के बच्चे ने तुरंत मुझसे कहा, लगभग इसका मतलब है कि हमारी कार में अच्छे ब्रेक होने चाहिए। बिल्कुल। कैसे मन, कैसे उसका मन उस विशिष्ट से इस अमूर्त तक जा सकता था कि आप अपने पड़ोसी को कार पर ब्रेक के एक नए विशिष्ट की रक्षा करते हैं। वह बिल्कुल सही थे, क्योंकि उस विशेष के पीछे का सिद्धांत अपने पड़ोसी के जीवन की रक्षा करना था। यदि उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि हमें धूम्रपान या कुछ और नहीं करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन की रक्षा करते हैं, तो यह एक गलत प्रयोग होगा। मैं नहीं जानता कि उस प्रकार की बुद्धिमत्ता कैसे सिखाई जाए। मैं नहीं जानता कि वहां ऐसा कुछ है जिसके लिए मूल बुद्धि की आवश्यकता होती है, कि कुछ लोगों में ऐसा करने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में अधिक होती है। लेकिन यह व्याख्या का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप इन प्राचीन कानूनों के पीछे के सिद्धांत को प्राप्त करने और उन्हें एक नई स्थिति में लागू करने में सक्षम हैं, जो वास्तव में इन कानूनों के साथ किया जाना चाहिए। खैर, अब हमारे पास वह पृष्ठभूमि सामग्री है और आइए स्तोत्र पर गौर करें। मैं वैसा ही करने जा रहा हूं जैसा मैंने भजन 3 में किया था, और बस आपका अनुवाद हाथ में रखूंगा या पृष्ठ 181 पर बाइबल का अनुवाद हाथ में रखूंगा। अब सबसे पहले हमने रूपांकनों के बारे में जो सीखा है उसके आलोक में आइए संरचना को देखें। हमारे पास यहाँ क्या है, जैसा कि मैं इसे समझूंगा, हमारे पास तुरंत सीधा पता है, हे भगवान। हमारे पास जो है वह श्लोक ए में ईश्वर की दया के लिए एक परिचयात्मक याचिका है, और फिर विशिष्ट है कि ईश्वर मेरे अपराध को मिटा देगा, जिसका अर्थ है कि बस स्लेट को मिटा दो, बस इसे मिटा दो। क्या झंझट है, बस इसे धोकर साफ कर दो, साथ ही मेरे सारे अधर्म धो डालो। फिर उस परिचयात्मक याचिका और संबोधन के बाद अब हम विलाप पर आते हैं, जो उसके पाप के लिए विलाप है। क्योंकि मैं अपना अपराध जानता हूं, अब वह मान लेता है और कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूं और केवल तू ही ने पाप किया है, तो वह अपना पाप कबूल कर रहा है। और मैं इस पर वापस आऊंगा, उसके प्रकट पाप और उसके स्वभाव के लिए श्लोक 3-6 में पाप स्वभाव, यही विलाप है। यह 3-6 तक पाप के लिए विलाप है। मैं इसका और अधिक बारीकी से विश्लेषण करूंगा। मुझे लगता है कि आप श्लोक 7 में देख सकते हैं, हम याचिका की शुरुआत इन अनिवार्यताओं से करते हैं, मुझे शुद्ध करो, मुझे सुनने दो, अपना चेहरा छुपाओ, मुझ में सृजन करो, मुझे बाहर मत निकालो, मुझे बहाल करो। तो हमारे पास एक परिचयात्मक याचिका के रूप में 2 छंद थे। श्लोक 3, 4, 5 और 6 में हमें विलाप के 4 छंद मिलते हैं, और अब हमें श्लोक 7-12 में याचिका के 6 पद मिलते हैं। इसलिए हम जो खोज रहे हैं, जो सामान्य रूप से होता है, वह एक संबोधन है और कभी कभी एक परिचयात्मक याचिका है। तब हमें विलाप करना पड़ता है, फिर हमें याचिका मिलती है, और फिर अंत में हमारी प्रशंसा होती है। और यह श्लोक 13-18 तक फैला हुआ है। इसलिए वह कहते हैं, मुझे अपनी उपस्थिति से दूर मत करो। नहीं, वह कहता है श्लोक, तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा और मेरे मुंह से तेरे धर्म का गीत गाऊंगा। और वहां हमें स्तोत्र का प्रशंसा खंड मिलता है, और मैं उस पर वापस आऊंगा। फिर इसके अंत में हमें एक इच्छा मिलती है। तो एक याचिका स्तोत्र के रूपांकनों द्वारा मूल संरचना को देखने के बाद, अब हम इस अद्भुत फूल को तोड़ते हुए विवेक पूर्वक समझ सकते हैं और इसका विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा सुझाव है कि इसके हिस्सों की जांच करना सार्थक है। आइए अब अधिक विस्तार से देखें। सबसे पहले परिचयात्मक याचिका या पते पर मैं इस पर नहीं पहुंचूंगा। मैं इस स्तोत्र का संपादन करूंगा। आप देखेंगे कि पता है, हे भगवान। और किसी तरह ईश्वर की कृपा से किसी बिंदु पर एक संपादन हुआ, जिसे हम एलोहिस्टिक स्तोत्र कहते हैं। और स्तोत्रों में से 42 स्तोत्र 42 से 83 तक 42 स्तोत्र हैं जो यहोवा यहोवा मैं हूं के स्थान पर एलोहिम का उपयोग करते हैं। जब हम स्तोत्रों के संपादन पर व्याख्यान देंगे तो आंकड़े मैं आपको बताऊंगा चौंका देने वाले हैं। पुस्तक के अन्य सभी खंडों में मेरा मतलब है इसमें 42 से 72 तक पुस्तक 2 शामिल है, यह पुस्तक 2 है। फिर पुस्तक 3 73 से 83 में प्राथमिकता एलोहिम है। वे ईश्वर को एलोहिम कहकर संबोधित करते हैं। यह बिल्कुल अलग चर्चा है। तो मुझे पता है कि इसे भगवान के रूप में संबोधित किया गया है क्योंकि मैं उस पुस्तक में हूं जो भगवान के लिए नाम का उपयोग करती है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें 42 भजन हैं और इसकी शुरुआत भजन 42 से होती है। संख्या 42 अकाल मृत्यु की बात करती है। यह मृत्यु अकाल मृत्यु की बात करता है और इसलिए आपके पास यह कुछ अंधकारमय पदार्थ है। तो उदाहरण के लिए जब एलिशा लड़कों पर भालू को बुलाता है तो कितने लड़के 42 जब येहू ने तख्तापलट करके अतल्याह के वंश को घात किया तो मारे गए लोगों की संख्या कितनी थी 42 42 का संबंध मृत्यु अकाल मृत्यु से है। यह कुछ चर्चा की मांग करता है। मेरे पास सभी उत्तर नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा जारी रखने के लिए मेरे पास हर चीज का उत्तर होना जरूरी नहीं है। मैं जो समझूंगा उसका आनंद लूंगा लेकिन मैं सिर्फ आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि यह इस एलोहिस्टिक स्तोत्र का एक हिस्सा है जहां वह उसे संबोधित करता है और यह ईश्वर और उसकी श्रेष्ठता है। जाहिर है कुछ ऐसे संपादक थे जो IEM की तुलना में ईश्वर को प्राथमिकता देते थे और निर्माता को प्राथमिकता देते थे। यह अनोखा है। वैसे भी यही पता है मैं तुम्हारे यहां लटके रहने से एक तरह से प्यार करता हूं लेकिन मेरी जिम्मेदारी अपने पाठ के प्रति ईमानदार रहना और आपको डेटा देना है। यह मेरा काम है। मैं यह नहीं कहता कि मैं सब कुछ समझा सकता हूं। मैं जो समझा सकता हूं वह समझा सकता हूं लेकिन मैं सब कुछ नहीं समझा सकता। अब ध्यान दें कि वह इस परिचयात्मक याचिका में क्या करता है। वह पाप के लिए शब्दावली को खत्म करता है, थकावट नहीं बल्कि वह तीन प्राथमिक बातों का उपयोग करता है। देखिए वह श्लोक 1 में अपराध, श्लोक 2 ए में अधर्म और श्लोक 2 बी में पाप के बारे में बात कर रहा है। वह पाप के लिए तीन अलग अलग शब्दों का उपयोग करता है। पाप के लिए प्रत्येक शब्द एक पूर्ण मानक मानता है। यह एक मानक से विचलन है। पाप के लिए यूनानी शब्द और क्या वहां बिल है? हां मुझे यहां सुधारें। अनामिया का अर्थ है बिना कानून के, बिना किसी मानक के, बिना मानक के जीवन यापन करना या किसी मानक का पालन न करना। किसी भी मामले में हिब्रू में प्रत्येक शब्द मानता है कि एक मानक है और यह एक मानक का उल्लंघन है। हर किसी की एक अलग तस्वीर और एक अलग ताकत होती है। अधिकांश लोग जानते हैं कि श्लोक 2 के अंत में पाप के लिए शब्द का अर्थ एक मानक है और आप उससे कमतर हैं। इसका मतलब है निशान चूक जाना। अनुवाद पाप का मूल अर्थ यह है कि आप लक्ष्य से चूक जाते हैं। आप माप नहीं करते। अतः कोई भी परमेश्वर की महिमा प्राप्त नहीं कर पाता। अतिक्रमण शब्द सबसे मजबूत शब्द है। इसलिए यदि आप इसके उपयोग में मानक उल्लंघन वाली किसी पंक्ति के बारे में सोचते हैं तो इसका अर्थ है विद्रोह करना। आप इसे विद्रोह की उठी हुई मुट्ठी के साथ चित्रित कर सकते हैं। दाऊद ने हत्या और व्यभिचार में परमेश्वर के शासन के विरुद्ध विद्रोह किया है। अधर्म शब्द का भी एक मानक है। मानक यह है कि या तो आप इससे भटके या इसे मोड़े। हमें यकीन नहीं है कि यह किसी भी दर पर है, यह व्युत्पत्ति है। आप व्युत्पत्ति पर कितना ध्यान दे सकते हैं, यह उपयोगी हो सकता है, लेकिन वह अलग अलग शब्दों का उपयोग कर रहा है। अधर्म के साथ अपराध भी सम्मिलित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सभी एक मानक मानते हैं और वह उससे चूक गया है। उसने इसके विरुद्ध अपराध किया है। उसने इसे घुमा दिया है। यह महत्वपूर्ण होगा जब वह कहता है, मैंने केवल तुम्हारे और तुम्हारे विरुद्ध पाप किया है क्योंकि मानक परमेश्वर का है। जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के स्तर के विरुद्ध पाप कर रहे होते हैं। इसके बहुत गहरे निहितार्थ हैं। तो हम देखेंगे जब यीशु कहते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। उन प्रखर धर्मशास्त्रियों ने कहा, पाप को कौन क्षमा करता है, परंतु ईश्वर नहीं, क्योंकि यह उसका मानक है जिसका हम उल्लंघन कर रहे हैं। मैं उस पर वापस आऊंगा। यह पहली बात है। ध्यान देने योग्य दूसरी बात यह है कि वह निर्गमन 34:6 का उपयोग कैसे कर रहा है। वह वास्तव में तीन शब्द हैं जो सीधे तौर पर ईश्वर के संचारी गुणों से निकलते हैं, अर्थात दया और अमोघ प्रेम। यह पद एक कमी है, दया, आपके अमोघ प्रेम और आपकी महान करुणा के अनुसार। वे निर्गमन 34:6 में 5 शब्दों में से 3 हैं। वे भगवान के तरीके हैं। तभी आयत 11 में वह कहता है, तब मैं अपराधियों को तेरी चाल सिखाऊंगा। परमेश्वर के मार्ग अनुग्रह के मार्ग हैं। पापियों को यही सुनना है कि भगवान उन पर दयालु हैं। ईश्वर के पास दया शब्द है, जैसा कि मैंने कहा, इसका मतलब है कि वह आपकी ओर देखता है। वह आपकी ओर कृपा दृष्टि से देखता है और वह आपकी कृपा की आवश्यकता को पूरा करता है। करुणा शब्द का अर्थ दया करना है। उसे हमारा फ्रेम याद है। वह जानता है कि हम धूल हैं। वह पाप करने की हमारी प्रवृत्ति को जानता है और वह हम पर दया करता है। उसने डेविड को बुलाया था और उसकी अटल निष्ठा है कि डेविड असहाय स्थिति में है। वह अपने आप को नहीं बचा सकता और वह पश्चाताप करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रेम से मेरे प्रति वफादार बने रहो और अपनी वाचा का पालन करो। तो जैसा कि मुझे लगता है कि मैकलेरन ने कहा है, पाप के गहरे गड्ढे में खड़ा होकर वह ऊपर देखता है, वह एक गहरे कुएं में है। वह ऊपर देखता है और उसे ईश्वर की कृपा के तारे दिखाई देते हैं जिन्हें वे लोग कभी नहीं देख पाते जो अपनी स्वयं की धार्मिकता की दोपहर की धूप में खड़े होते हैं। वह पाप के उस गहरे गड्ढे में खड़ा है और वह ईश्वर के इस गुण को देखता है। तो मेरा प्रोत्साहन यह है कि क्या हुआ अगर कंकाल हमारी कोठरी में हो सकते हैं, हालांकि उस छेद की गहराई में आप वहां अनुग्रह के उन सितारों को देख सकते हैं। यह दूसरी बात है, पाप के लिए शब्द, अनुग्रह के लिए शब्द। कैसा भगवान है। तीसरा, वह ईश्वर से उस पर दया करने इत्यादि के अतिरिक्त और क्या मांग रहा है। दो चीजें। एक तो माफी के लिए फोरेंसिक है, मिटा दो, बस स्लेट को साफ कर दो। पुराने नियम में क्षमा व्यक्त करने के 54 अलग अलग तरीके हैं। वह उन्हें पश्चिम से पूर्व की दूरी तक हटा देता है। वह उन्हें समुद्र की तलहटी में दबा देता है। वह अपना चेहरा छिपा लेता है। वह अब उन्हें नहीं देख सकता। और यहां एक और है, बस इसे स्लेट से मिटा दें। जब मैं स्वर्ग पहुंचता हूं तो वे सभी चीजें जो मैंने गलत की थी क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, मेरी स्लेट साफ है। वह हम पर आशीर्वाद डालता है। इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी पीछे मुड़कर देख सकते हैं और अपनी असफलताओं को देख सकते हैं। कम से कम मैं ऐसा करता हूं और जानता हूं कि भगवान की कृपा इसे माफ कर देती है और इसे दूर कर देती है। यह अब उनकी नजर में नहीं है। और दूसरा मुद्दा यह है कि वह न केवल कानूनी माफी चाहता है, इसे मिटा देना चाहता है, बल्कि वह धार्मिक शुद्धिकरण की भी तलाश कर रहा है, यानी उसे अशुद्ध महसूस होता है। वह परमेश्वर के लोगों के साथ रहने में अयोग्य महसूस करता है। वह एक गंदे वस्त्र की तरह महसूस होता है, उससे बदबू आती है, और इसीलिए वह पद्य में कह रहा है, मुझे धो डालो। और इसका मतलब है कि इसे एक नदी में डाल दो और इसे बार बार रौंद दो और मुझे धो और मुझे शुद्ध करो और मुझे पाप से मुक्त करो। वे परिचयात्मक याचिकाएं हैं ताकि उसे कानूनी तौर पर माफ कर दिया जाएगा। वह परमेश्वर के लोगों के साथ मंदिर में वापस जाने के लिए तैयार होगा, भले ही उसके पास एक कुरिन्थियों 6 जैसी सभी भयानक चीजें थीं, और आप व्यभिचारी और अनैतिक थे, और आप समलैंगिक थे, और पॉल कहते हैं कि आप वह सब थे। आप परमेश्वर के लोग हैं और आप उसके लिए एक मीठी सुगंध हैं, और वह हमें धोता है। मेरा मतलब है, वह अद्भुत है। यह अद्भुत कृपा है। इस भजन के लिए भगवान का धन्यवाद करें जो इसे व्यक्त करता है। अब हमारे पास उसका विलाप है, जिसमें उसकी स्वीकारोक्ति भी शामिल है, और वह 2 भागों में विभाजित है। सबसे पहले वह अपने पापों के प्रकट कृत्यों के बारे में बोल रहा है और उसे मिटाने के लिए वापस जा रहा है। अब वह अपने प्रकट पाप कृत्यों के बारे में बात करता है। मैं जानता हूं कि मेरा अपराध और पाप सदैव मेरे सामने रहते हैं। ध्यान दें कि कैसे वह व्यक्तिगत सर्वनाम मैं, मेरा, मेरा, मैं के साथ पूरी जिम्मेदारी लेता है। मैं दोषी हूं भगवान, यह मैं हूं। और मैं जानता हूं, दूसरे शब्दों में, मैं जानता हूं कि यह एक अपराध है। वह जानता है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। यहां कोई कठोरता नहीं है। और मेरा पाप सदैव मेरे सामने रहता है। मुझे लगता है कि वह जो कह रहा है वह यह है कि जब मैं कोई पाप करता हूं तो मैं उसे बार बार अपने दिमाग में दोहराता रहता हूं। मैं इसके पास वापस जाता रहता हूं और इसे अपने दिमाग में देखता रहता हूं। और वह जो मांग रहा है वह वही है जो हमेशा मेरे सामने रहता है। और वह भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मुझे एक साफ दिल दो, उस स्मृति को मुझसे दूर ले जाओ। यह हमेशा मेरे सामने रहता है। और फिर वह एक आश्चर्यजनक बात कहता है, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे ही विरुद्ध पाप किया है और वही किया है जो तुम्हारी दृष्टि में बुरा है। तो जब आपने निर्णय दिया तो आप सही थे और न्यायसंगत थे। वह आपके और आपके ही खिलाफ कैसे कह सकता है? खैर, यह पाप के लिए शब्दों के कारण है। यह भगवान का मानक है, यह कोई मानवीय मानक नहीं है, और इसलिए यह परमेश्वर के विरुद्ध एक अपराध है। इस प्रक्रिया में आप अपने पड़ोसी के विरुद्ध पाप करने के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन यह बोलने का एक ढीला तरीका होगा। जिस तरह से मैं इसे चित्रित करता हूं वह यह है कि मैं न्यूयॉर्क शहर के सामने जर्सी सिटी की सड़कों पर बड़ा हुआ हूं, और यह एक सीमेंट फुटपाथ था। हम एक तरह से एक पहाड़ी पर थे और 6 परिवार वाले घर में रहते थे, और बाहर सड़क के अलावा खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो हम 2 हाथ वाली टच फुटबॉल खेलेंगे। इसे बार बार उखाड़ा जाता है। एक बार मेरा सिर कार के फेंडर पर लटक गया, खून बह रहा था। माँ, हमें वहां सड़क पर खेलने दो। बच्चों के पास ऐसे लड़के होते हैं जिन्हें इस तरह का काम करना पड़ता है। तो उसका एक नियम था और वह यह था कि आप गेंद को किक नहीं कर सकते थे। यही उसका एकमात्र नियम था। खैर, एक दिन मैं प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। मैंने गेंद को अच्छा बूट दिया। मेरे लिए कभी भी एक अच्छा बूट नहीं होगा, लेकिन यह था। मैंने गेंद को किक मारी और वह सीधे दूसरी मंजिल पर मेरे पड़ोसी की खिड़की से होकर चली गई। मुझे लगता है मेरी माँ देख रही थी। जैसे ही मैंने कांच के टूटने की आवाज सुनी, मैंने अपनी माँ को चोट लगने की आवाज सुनी और मैं गहरी परेशानी में पड़ गया। मैंने किसके विरुद्ध पाप किया, मेरी माँ या मेरा पड़ोसी? मैंने अपनी माँ के विरुद्ध पाप किया। यह उसका मानक था जो मेरी रक्षा करना था। मैंने अपने पड़ोसी को नुकसान पहुंचाया और जो कुछ भी मुझे मिला उसमें से मुझे वह खिड़की बदलनी पड़ी। मुझे इसके लिए क्षतिपूर्ति करनी पड़ी। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, मैंने अपनी माँ के खिलाफ पाप किया है। यह उसका नियम था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब यीशु ने लकवे के रोगी को ठीक किया तो उन्होंने लकवे के रोगी को यीशु के सामने घर के लिए छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, और अपना बिछौना उठा और चल फिर। तब कुशाग्र धर्मशास्त्री ने कहा, ईश्वर के सिवा पाप को कौन क्षमा कर सकता है? वह देवता का दावा था। ऐसा कौन कर सकता है? यीशु ने कहा, यह कहना आसान है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं या अपना बिस्तर उठाओ और चलो और मनुष्य को चंगा करो। मैं मिस्टर एवरीवन नहीं हूं। लेकिन आप देखिए, उन्होंने इसे देवता के दावे के रूप में देखा कि वह पाप क्षमा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उसके ऐसा करने का कारण, जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे नहीं लगता कि इज़राइल में हर किसी ने उसे माफ कर दिया है। मुख्य बात यह थी कि भगवान ने उसे माफ कर दिया। मुझे नहीं लगता कि अहितोपेल ने उसे माफ किया है। शायद जो लोग उरियाह के मित्र थे उन्होंने भी उसे माफ नहीं किया। सो वह कहता है, मैंने केवल तेरे और तेरे ही विरुद्ध पाप किया और वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए आप अपने फैसले में सही हैं और जब आप फैसला करते हैं तो न्याय संगत होते हैं। इसलिए केवल भगवान ही इस बारे में निर्णय ले सकते हैं। मैं किसी अन्य के निर्णय के अधीन नहीं हूं। मुझे लगता है कि वह इस भजन में यही बात कहना चाह रहे हैं। तो वह पाप के प्रकट कृत्य को स्वीकार करता है। अब वह उससे आगे बढ़ता है। वह फ्रायड की आईडी पर वापस जाता है। मुझसे ऐसा क्यों करवाया गया? मैं अपने घर में भी मालिक नहीं हूं। वह अब अपनी नैतिक नपुंसकता की बात करते हैं। वह हमारे स्वभाव के भीतर विरोधाभास के बारे में बात करते हैं। तो वह कहता है, निःसंदेह मैं जन्म से ही पापी था और जब से मेरी माता ने मुझे गर्भवती किया तब से ही पापी हूं। अब इसे गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे के बारे में बहुत कुछ कहना चाहिए। वे आध्यात्मिक अवस्था में हैं और गर्भ में वे पाप की अवस्था में हैं। यह मूल पाप है। मैं पापी हूं। यही मेरा मूल स्वभाव है। मैं अपनी माँ के गर्भ में पापी था। इसमें विरोधाभास यह है कि वह कहते हैं, ठीक है, हमें इसे यहीं रखना चाहिए था। तो भी तूने गर्भ में ही वफादारी की इच्छा की। उस गुप्त स्थान में तूने मुझे बुद्धि सिखाई। यहां उसका विरोधाभास है। वह मूल रूप से पापी है, लेकिन परमेश्वर उसमें यह विवेक भी डाल रहा था कि वह सही और गलत को जानता है। उसके पास बुद्धि हो सकती है। वह उन्हें यह ज्ञान दे रहा था कि उसे कैसे जीना चाहिए। यह मानव स्वभाव का विरोधाभास है कि हम पापी हैं, लेकिन हम बेहतर जानते हैं। वह यही कबूल कर रहा है। तो मैं पापी हूं, लेकिन मुझ में कुछ और भी है। यह डॉक्टर जेकेल और मिस्टर हाइड का संघर्ष है जो हमारे अंदर है। तो यह कहने के बजाय मैं अपनी मदद नहीं कर सकता, वह कह रहा है, वह कबूल कर रहा है कि मैं एक पापी प्राणी हूं। वह कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही हूं। मैं अपनी मदद नहीं कर सकता। मैं जीवन जीने के इन तरीकों से परिचित हूं और मैं यही हूं। मैं जिम्मेदार नहीं हूं। डेविड कह रहा है, वह इस पर शोक मना रहा है। मैं पापी हूं और मैं बेहतर जानता हूं। अब विलाप की इन चार पंक्तियों और अपने पाप के प्रकट कृत्य तथा ऐसा न करने की अपनी नैतिक नपुंसकता की स्वीकारोक्ति के बाद अब छह पंक्तियों की उनकी याचिका आती है। पहले तीन पद 7, 8 और 9 में पाप के प्रकट कृत्यों से संबंधित हैं। अगले तीन उसकी नैतिक नपुंसकता से संबंधित हैं। वह एक नई भावना की तलाश में है जो उसे सक्षम बनाएगी। सबसे पहले वह अपनी खुली हरकतों से इसे उलट देता है। अब वह सफाई का काम शुरू करता है। पहले भाग में उन्होंने क्षमा मांगी और फिर शुद्धि मांगी। अब वह सफाई का काम शुरू करता है। वह कहता है, मुझे जूफा से शुद्ध करो। यह बल्कि तदर्थ है। हाइसोप एक बहुत बालों वाला पौधा था और आपने इसे खून और पानी में डुबो दिया। इसका प्रयोग दो अवसरों पर किया गया। यह तब था जब, मान लीजिए, आपकी नजर एक शव पर पड़ी और आपने मृत्यु देखी। तब तुम याजक के पास जाओगे और वह तुम पर खून और पानी छिड़केगा। उस प्रतीकात्मक कार्य में आपको मृत्यु के दायरे से जीवन के दायरे में स्थानांतरित कर दिया गया। यही उद्देश्य था कि जब आपने किसी अशुद्ध को देखा और मृत्यु की उपस्थिति में थे तो आप उस दायरे से संबंधित नहीं हैं। आप जीवन के इस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो पुजारी आप पर पानी और खून डालेगा जो मसीह के खून की आशंका थी। वे लाल बछिया की राख का उपयोग करते थे जिसके बारे में इब्रानियों के लेखक का कहना है कि वह ईसा मसीह का एक प्रकार था। जैसा कि हम विश्वास के द्वारा उसका, उसके रक्त और उसके पानी को अपने जीवन में अपनाते हैं, हम मृत्यु के दायरे से जीवन के दायरे में स्थानांतरित हो जाते हैं। मुझे लगता है डेविड इसका उपयोग कर रहे हैं। मैं मृत्यु के लोक में हूं, मुझे जीवन के लोक में लाओ। दूसरे तरीके से आप इसका उपयोग करेंगे, दूसरे मामले में आप जूफा का उपयोग करेंगे यदि आप एक कोढ़ी थे और आप अशुद्ध थे और फिर आप ठीक हो गए थे और आप पर फिर से छिड़काव किया जाएगा तो आपको दूसरे से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और मुझे यही लगता है कि डेविड वास्तव में यहाँ कुछ हद तक तदर्थ है। वह स्वयं को मृत्यु के दायरे में देखता है। वह भगवान से उसे जीवन के दायरे में ले जाने के लिए कह रहा है। वह इस भजन में खून से इनकार नहीं कर रहा है। ऐसा हमेशा आरोप लगाया जाता है। जब आप हाइसोप के बारे में बात करते हैं तो वह रूपक है। वह एक संज्ञा है दूसरे के लिए, लेकिन हिसोप का तात्पर्य रक्त से है। तो वह कहता है, मुझ पर जूफा छिड़क दो, मुझे जूफा से शुद्ध करो और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो दो और मैं बर्फ से भी अधिक सफेद हो जाऊंगा। अब यहां हम भाषण के दूसरे अलंकार पर आते हैं। मुझे खुशी और खुशी सुनने दो। अब यह स्पष्टतः भाषण का एक अलंकार है। अलंकार वह है जब आपके पास ऐसे शब्द हों जो एक साथ नहीं चलते हों। आप भावनात्मक स्थिति नहीं सुन सकते। आप जानते हैं, आप भाषण के अलंकार के साथ काम कर रहे हैं। कुछ गड़बड़ है। यह शब्दों के सकारात्मक संयोजन में है। मुझे सुनने दो। तो उसे कुछ सुनना होगा। आपको इसे डालना होगा, इसे भरना होगा जिससे आनंद और खुशी पैदा होगी। एकमात्र चीज जो मैं देख सकता हूं कि वह नाथन के शब्दों के बारे में बात कर रहा है, आपको माफ कर दिया गया है और इससे खुशी और खुशी पैदा होगी। तो वह कविता की संक्षिप्तता में कूद पड़ता है जिससे मुझे क्षमा का शब्द सुनने को मिलता है और इससे खुशी और खुशी पैदा होगी जो कि भगवान ने बिल्कुल किया है। जब मैंने 10 साल के बच्चे के रूप में ईसा मसीह को स्वीकार किया तो मैं बस यही जानता था कि उन्हें प्रार्थना भेजनी है, भगवान इसे भेजने के लिए मुझ पर दयालु हो। मैं जानता था कि उसने मेरी प्रार्थना सुनी है और इससे खुशी और आनंद उत्पन्न हुआ है। और जो हड्डियां तूने कुचल डाली हैं वे आनंदित होंगी। और आप मेरे पूरे अस्तित्व को देख सकते हैं और यह उसके मानस मेरे पूरे अस्तित्व को संदर्भित करता है। अब बात मेरे अधर्म को मिटाने की आती है। आप देखिए कि यह कैसे एक चियास्म है। उन्होंने ब्लॉट आउट से शुरुआत की और फिर उन्होंने लॉन्डर क्लींस किया। फिर वह याचिका के पूर्ण विस्तार के लिए यहां आता है, शुद्ध करें, और अब हमने मिटा दिया है। और हम वहीं वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अपना मुख मेरे पापों से छिपा ले, जो कि भाषण का दूसरा अलंकार है, और मेरे सारे अधर्म को मिटा दे। तो जाहिर है हम श्लोक 7 पर वापस जा रहे हैं, मुझे धो दो, जो श्लोक 2 से मेल खाता है, धो डालो। और श्लोक 9 ब्लॉट आउट, जो श्लोक 1 पर वापस जाता है, ब्लॉट आउट। और आप देख सकते हैं कि कैसे आपके पास एक परिचयात्मक याचिका है जिसे अब पूरी याचिका में विस्तृत किया जा रहा है। तो अब हम दूसरे भाग पर आते हैं। उन्होंने मानव स्वभाव के इस विरोधाभास पर अपनी नैतिक नपुंसकता पर अफसोस जताया है। हम पापी पैदा हुए हैं और फिर भी हम बेहतर जानते हैं। तो संकल्प क्या है? यह परमेश्वर की आत्मा है। जहां तक वह इसे समझ सका यह आत्मा ही होगा। ध्यान दें कि अब भी श्लोक 7 में श्लोक 10, 11 और 12 में क्या होता है। प्रत्येक श्लोक आत्मा का संदर्भ देता है। 10 नई आत्मा, दृढ़ आत्मा बनो। 11 पवित्र आत्मा, 12 इच्छुक आत्मा, और इसलिए यह एक बदली हुई आत्मा है जो वह मांग रहा है, जो उसे ताकत देगी। तो वे कहते हैं, मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय पैदा करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की क्षमा को स्वीकार कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर सकते हैं और वे अपने पाप में बने रहते हैं। वह एक रचना कहते हैं कि आप ईश्वर की कृपा को स्वीकार करने में सक्षम हैं। मेरे अंदर एक ऐसा शुद्ध हृदय पैदा करो कि मुझे सच में पता चल जाए कि मुझे माफ कर दिया गया है। वह तो तुम्हें ही बनाना है। प्रत्येक अच्छा और उत्तम उपहार ईश्वर की ओर से आता है। क्षमा स्वीकार करने की क्षमता भी ईश्वर का उपहार है। मेरे अंदर एक साफ दिल पैदा करो और उसे नवीनीकृत करो ताकि मेरे पास एक दृढ़ आत्मा हो और मैं जीवन के एक नए तरीके में दृढ़ रहूं जो मेरी भ्रष्टता पर काबू पालेगा। दूसरा, मुझे अपनी उपस्थिति से दूर मत करो। वह राजा है और अपनी पवित्र आत्मा मुझसे ले लो। पवित्र आत्मा ने मूल रूप से एक व्यक्ति को सक्षम और सशक्त बनाया। जब परमेश्वर ने शाऊल से उसकी आत्मा ले ली तो वह राजा के रूप में कार्य नहीं कर सका। दाऊद कह रहा है, उस अभिषेक को, उस आत्मा को मुझसे दूर मत करो। मुझे बाहर निकालो। मुझे आपकी पवित्र आत्मा और राजा बनने के लिए आपके अभिषेक के साथ बने रहने दीजिए। मुझे अपने उद्धार का आनंद लौटा दो और आनंद से भरपूर हो जाओ और मुझे एक इच्छुक आत्मा प्रदान करो। इसलिए मैं एक शुद्ध हृदय, आत्मा से परिपूर्ण, दृढ़ आत्मा के साथ अपने आप को पूरी तरह और स्वतंत्र रूप से आपके सामने पेश करता हूँ। मैं स्वयं को उस प्रकार की आत्मा के साथ स्वतंत्र इच्छा की भेंट के रूप में अर्पित करता हूँ। इस तरह वह अपनी नपुंसकता पर विजय पालेगा। अब हम उनके प्रशंसा अनुभाग पर आते हैं। तब मैं तेरे मार्ग का उल्लंघन करना सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। और इस स्तोत्र में जो मार्ग हैं वे दया, अमोघ प्रेम, अनुग्रह के मार्ग हैं। निर्गमन 34:6 में ये तरीके थे। क्योंकि लोगों को आशा है कि उड़ाऊ पुत्र की तरह भगवान उन्हें माफ कर सकते हैं, वे भगवान की ओर मुड़ सकते हैं और मोक्ष पा सकते हैं। वे आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें माफ किया जा सकता है और जीवित ईश्वर के साथ उनका रिश्ता हो सकता है। वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। हे परमेश्वर, तू जो परमेश्वर है, मेरे उद्धारकर्ता, मुझे रक्तपात के अपराध से छुड़ा और मेरी जीभ तेरे धर्म का जय जयकार करेगी। और यहाँ हमारे पास प्रशंसा के शब्द हैं। मैं इसका गीत गाऊंगा। आपकी धार्मिकता का अर्थ है कि आप जो कुछ अस्त व्यस्त है उसे पुनर्स्थापित करें, जिसमें मोक्ष भी शामिल है। यह डेविड के साथ जो भी गलत है उसे ठीक करने जा रहा है। अक्सर धार्मिकता लगभग मोक्ष के बराबर होती है, क्योंकि आप उल्टी सीधी स्थिति को बहाल कर देते हैं। मेरे होंठ खोलो और मेरा मुंह तुम्हारी स्तुति का वर्णन करेगा। तो वहां हमारे पास प्रशंसा के शब्द हैं। मैंने कहा प्रशंसा के दो हिस्से होते हैं। इसमें प्रशंसा का एक शब्द है और इसमें एक बलिदान है। तुम शब्द के साथ मिलकर भोजन करोगे। इसी संदर्भ में डेविड कह रहे हैं, यह हमारे लिए एक गर्भवती पत्नी एक मृत पति के साथ बड़ा भोजन करने का समय नहीं है। आखिर हम यहाँ इतनी बड़ी पार्टी कैसे करने जा रहे हैं? हम उस पर भोजन नहीं कर सकते थे। और इसलिए वह कहता है, तुम बलिदान से प्रसन्न नहीं होते। मैं इसे ले आऊंगा। तुम होमबलि से प्रसन्न नहीं होते। मेरा बलिदान, हे भगवान, जिस चीज से हम सब भर सकते हैं, वह एक टूटी हुई आत्मा, एक टूटा हुआ, एक पछतावा दिल है। हे भगवान, आप तिरस्कार नहीं करेंगे। और इसलिए उसका बलिदान उसकी टूटी हुई आत्मा है। वह बलि प्रथा से इनकार नहीं कर रहा है। इसे लगभग हर कोई पढ़ता है। वह बलि प्रथा से आगे बढ़ चुका है। वे छेनी से सफाई के बारे में नहीं पढ़ते। वे भजन का स्वरूप नहीं समझते। वे भजन को सही ढंग से संभाल नहीं सकते। यदि आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आप प्रशंसा अनुभाग में हैं और कैसे समझें कि यह प्रशंसा क्या है, बलिदान क्या है, और फिर अंत में इच्छा आती है और वह उससे आगे बढ़ जाता है कि पूरा राज्य एक बादल के नीचे आ गया है। और अब यदि राजा फिर से बहाल हो जाए तो क्या तुम सियोन को समृद्ध करोगे और यरूशलेम की शहरपनाह का निर्माण करोगे? और जब ऐसा होगा तब हम फिर से होमबलि चढ़ाएंगे। तब तू धर्मियों के होमबलि से प्रसन्न होगा और तेरी वेदी पर बैल चढ़ाए जाएंगे। और यदि राजा सही हो जाता है तो राज्य सही हो जाता है और राज्य फिर से फैल सकता है, क्योंकि राजा सही है। हमारे लिए मैंने इसे मुख्य संगीतकार को सौंप दिया, चाहे हमारा प्रभाव क्षेत्र कुछ भी हो, कि यदि हम सही हैं और हमें शुद्ध कर दिया गया है और हमें माफ कर दिया गया है तो राज्य का विस्तार हो सकता है। परंतु हमें कोई भी पाप त्यागना होगा। यह भजन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के हैं। यह सत्र संख्या 15 याचिका स्तोत्र 51 है।